पिछला लेसन आपने देखा, हमने बहुत कुछ उसमें सीखा। हमने एक बात तो ये सीखी कि शिर्क, और ऐसा शिर्क जैसे कि नसारा करते हैं, उसका अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया कि ये सब अल्लाह ताला के अब्द हैं, गुलाम हैं, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे उनकी माँ हो, और यहाँ जमीन में जो कोई भी है, अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर अल्लाह सबको भी हलाक कर दे, उससे सवाल नहीं किया जा सकता, वो सवाल करता है लोगों से, तो वो खुदा कैसा हुआ फिर कि जो अपने आप को भी ना बचा सके। और फिर अल्लाह ताला ने वाजे फरमा दिया कि बादशाहत आसमानों और जमीन की और जो कुछ उनके दरमियान है वो अल्लाह ही की है। फिर यहूद और नसारा की जो गलत फहमी है कि हम भी बड़े चहीते हैं अल्लाह ताला के, तो वो गलत फहमी का भी अजाला कर दिया गया और उनको बता दिया कि आपके पास एक रसूल आ गया है जो कि फतरा के बाद आए। एक सवाल है, किसी ने किया है कि जी फतरा के जमाने के अंदर जो लोग थे उनका अब क्या होगा, उस वक्त तो कोई रसूल नहीं आए तो उनका क्या बनेगा। तो बात यह है कि हम इसका जवाब पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, आप लोग शायद भूल गए हो कि हमने जो पहला पारा खत्म किया तो उसकी आखिरी आयत क्या थी, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना मा कानू यअमलून। अब तर्जुमा तो नहीं करने की जरूरत, जो नए हैं उनके लिए तर्जुमा कर देते हैं। ये उम्मत है जो गुजर चुकी है, उन्होंने किया जो वो उनके लिए, और तुमने जो किया वो तुम्हारे लिए, तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। हमें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उनके साथ क्या होगा, ना तो हम जज हैं ना हम उनके अमाल के कोई जिम्मेदार हैं। आप ये देखें ना कि ये ऐसे ही है कि हम कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, अब हमें पर्चा दिया गया है हल करने के लिए, लेकिन हमें ज्यादा फिक्र यह है कि वो जो पर्चा दे के बाहर जा चुके हैं उनका पर्चा कैसा हुआ। तो उससे कतई नजर उनका पर्चा हुआ है अच्छा, नहीं हुआ अच्छा है, क्या उनका नतीजा निकलेगा, उसकी अगर हमें ज्यादा फिक्र है और जो हमें करने को काम दिया गया उसकी नहीं है, तो वो बताएं कि फिर ये कैसी बात है ना। तो ये तो समझदारी की बात नहीं है। तो हमें नहीं फिक्र करने की जरूरत उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब बता दिया कि वो किसी के साथ जुल्म करने वाला नहीं है, तो फिर हमें क्या फिक्र है, हमें कोई फिक्र होनी चाहिए। हमारा मामला उसके साथ है जो अदल और एहसान करने वाला है और जो गफूर और रहीम रब है और जो हर एक के हालात जानता है, किसके पास कौन आया, किसको किसने क्या बताया, कौन किस हालत में था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ कि उनके साथ क्या होगा, मैं अल्लाह ताला के ऊपर तो कोई भी नहीं बात बता सकता कि अल्लाह उनके साथ क्या मामला करेगा, उनको बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा, हमें क्या पता। अभी आज के भी सबक में आ रहा है, अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे अजाब दे। तो ये जो जजमेंट की बात होती है ना, ये किसी से सवाल ना किया करेंगे, फलाने का क्या बनेगा, फलां का क्या बनेगा। एक तो सबसे पहले हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, सेकेंडली ये कि अल्लाह ताला के ऊपर कोई फतवा नहीं दे सकता, वो बख्श देगा उसको या वो उसको सजा देगा जरूरी है, हम कौन होते हैं कहने वाले, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इसकी इन फिक्रों में ज्यादा ना पड़ा करें, अपनी फिक्र ज्यादा किया करें। ठीक है, फिर हमने देखा कि कितने अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर एहसानात किए, उनके अंदर जो एहसान था कि उनके अंदर बादशाह बनाए, तो मैंने उसके ऊपर आपको बताई थी कुछ बातें, आप लोगों ने उम्मीद है उस पर गौर किया होगा और फिर अपनी हालत पे शुक्र गुजारी के जज्बात आए होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें भी बादशाह बनाया वाकई। ठीक है, और फिर हमने बनी इसराइल की जो बेवफाई थी और जिस तरह उनका सलूक था अपने नबी के साथ और किस तरह उनकी ढिठाई थी अल्लाह के हुक्मों के आगे, वो भी हमने देख ली। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ कि एक दो दिन नहीं, 40 साल तक कुरान कहता है कि वो वहीं घूमते रहे। तो हम भी कहीं ऐसे काम ना करें कि जिंदगी के 40 साल गुजर जाएं और वहीं के वहीं खड़े हों जहां 40 साल पहले थे। हमारी जिंदगी में बेहतरी आनी चाहिए और हर आने वाला दिन पिछले से बेहतर होना चाहिए। ये ना हो कि हम भी मैदान टी में गोल गोल घूम रहे हैं और 40 साल बाद पता चले हाय हम तो वहीं हैं लेकिन इतना टाइम गुजर गया। ये नहीं करना। आज की भी आयात बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यानी सबक आमोज है। और मैंने जैसे आपको बताया था सूरतुल माईदा के बारे में कि इसके अंदर अहकामात आपको काफी मिलेंगे और जो हतमी अहकाम आते हैं इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई थी, कोई ऐसे कोई नई चीजें नहीं हुई ना कोई मनसूख हुई चीजें, ये फाइनल है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि वो लोग जो के माशरे का अमनो अमान खराब करते हैं, चाहे चोरी करके डाके डाल के या जिस भी सूरत में दहशतगर्दियां करके, कुरान क्या कहता है कि उनकी क्या सजा होनी चाहिए, क्या उनकी कोई सजा भी होनी चाहिए या वो ठीक करना है, क्या उनकी कोई पकड़ भी होनी चाहिए या उनके ऊपर रहम खा के उनको छोड़ देना चाहिए, क्या उनके साथ सलूक होना चाहिए, वो भी आज हम देखेंगे। और हमें पता चलेगा इंशाल्लाह ताला आज के सबक से कि इस्लाम की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि माशरे के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर अमनो अमान रहे, लोग चैन से जिंदगी गुजार सके, वहां पे बेचैनियां ना हो। ठीक है, और उसके सद्देबाप के लिए कि वहां पे जो भी जराइम है उनको रोकने के लिए इस्लाम ने क्या क्या हमें अहकामात दिए हैं। ठीक है, फतवत लहू नफ्सुहू, अब ये बात बहुत ही काबिले तवज्जो है, उसके नफ्स ने उसके लिए उस चीज को आसान कर दिया, यानी इस कत्ल करना, कत्ला अखी ही कत्ल करना अपने भाई का, उसके नफ्स ने उसके लिए आसान कर दिया। क्या मतलब? इसका मतलब है कि अंदर कश्मकश चली, कश अंदर तो आता है ना कि भाई दिल में जब कोई बात आती है तो देखिए फौरन इंसान नहीं करता, अंदर कोई ना कोई जमीर होता है, इंसान अपने आप को कहता है कि नहीं इस तरह से नहीं, लेकिन नफ्स जो होता है उसको तावीले जस्टिफिकेशंस देता है, नहीं लेकिन उसने भी तो ऐसे किया था, लेकिन फलां वक्त में देखो मेरे साथ भी तो ये हुआ था, नहीं है ये तो आजकल होता ही है, नहीं ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, यानी नफ्स जो है ना इंसान को तावीलें दे दे के, इस तरह की बातें सुझा सुझा के उसको इतना जस्टिफाई करता है उस बुरे काम को कि इंसान के लिए फिर वो आसान हो जाता है, पहले सोचता है कि आई कैसे करूंगा, लेकिन फिर वही नहीं अंदर ही अंदर एक चीज चल रही होती, और हम मेरे ख्याल इससे गुजरते हैं और बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं कि कैसे अंदर वो एक जंग चल रही होती, कैसे एक कहीं ना कहीं से, चलो किसी में जंग नहीं भी चले तो कभी वो अंदर से ख्याल तो उठता है ना कि फिर रहने देती हूँ नहीं करती, लेकिन फिर एकदम आता है नहीं 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 फिर एकदम वो रेज आ जाती है, वो क्या होता है, वही शैतान। मैंने आपको बताया ना कि आपको पता चलेगा इसके पीछे कैसे शैतान, और इंसान का जो नफ्स है ये अंदर का शैतान है, एक बाहर का भी शैतान है, वो भी अपना काम करने से बाज नहीं रहता, वो भी काम करता है, लेकिन ये एक दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, और ये नफ्से अम्मारा, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, ये नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई पे ही उकसाता है, ये नफ्स इंसान को छोड़ता नहीं, इसीलिए तो दुआ भी है ना, या हय्यू या क्यूम बिरहमतिका अस्तगीस फअस्लिह ली शअनी कुल्लहू वला तकिलनी इला नफ्सी तरफा तहीन, के या हय्यू या क्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, हय्यू और क्यूम मैं अपनी फरियाद तेरे आगे रखती हूँ, तू मेरा फरियाद रस है, मेरे सारे कामों की सलाह कर दे, और अल्लाह एक पलक झपकने के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर, क्योंकि नफ्स इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है, नफ्स को तो कहता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो ना, इसलिए इसको नफसानी ख्वाहिशात क्यों कहा जाता है, नफ्स की ख्वाहिश, नफ्स कहता है मुझे खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, और मनमानियां अच्छी लगती हैं, बाज लोगों ने कुरान कहता है अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया होता है, नफ्स के पीछे चलते हैं, वो नफ्स के बंदे होते हैं, अब नफ्स ने जब ख्वाहिश कर दी कि मुझे ये लड़की चाहिए, या कोई भी ख्वाहिश, अब आप मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए और कोई ख्वाहिश हो सकती है, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, अब वो जो नफ्स की ख्वाहिश है, इंसान जब नफ्स का गुलाम होता है तो बस उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए फिर वो लग जाता है। यहां पे देखें ये बताया गया एक बड़ा, मतलब हमें ये नुक्ता यहां से मिलता है कि इंसान के अंदर एक जमीर जरूर है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि वो उसको बुराई से रोके, लेकिन जब उसका नफ्स तुल जाता है बुराई के ऊपर तो फिर नफ्स आमादा कर लेता है, उसको राजी कर लेता है कि तूने अब ये करना है। तो इंसान फिर इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाने को तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब है जिंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, पहले ही उसको डिफ्यूज करना चाहिए फर्स्ट स्टेप पे। जब इंसान की ख्वाहिशात इतनी जोर पकड़ जाए ना, तब फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक दिन में नहीं होती, ये कुछ इंसान के अंदर पलती हैं ये इस तरह की चीजें, ऐसी ख्वाहिशात, फिर पलते पलते वो फिर हाइप अप हो जाती है। इसलिए शुरू से ही अपनी उसको, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जो नफ्स कह रहा है उसको वहीं पे, मतलब नफ्स आपका कहता है, एक एक एग्जांपल देते हैं, आपका बस रात को देर से सोए आप, आपका फजर के ऊपर अलार्म बज रहा है, नफ्स कह रहा है सो जाओ थोड़ी देर और, आपने नफ्स की बात सुन ली, अगर अभी उठती हूं बस 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट बाद फिर अलार्म बज गया, अब फिर अच्छा बस 5 मिनट और, अब नफ्स अंदर से कुछ चीज कह रही है कि उठ जाऊं, लेकिन नफ्स कह रहा है कि नहीं अभी सो जाओ, अब अंदर कश्मकश चली ना और नफ्स जीत गया। फिर उसके बाद जब 5 मिनट और भी गुजर गए और 5 मिनट और भी गुजर गए, फिर उसके बाद क्या ख्याल आया, कजा पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं, रात को इतनी देर से जो सोई थी, जस्टिफिकेशन दी ना नफ्स ने, रात इतनी देर हो गई थी, नींद पूरी नहीं हुई, सारा दिन फिर थकन रहेगी, सर भारी रहेगा, क्या फायदा उसका, फिर कोई काम नहीं हो सकेगा, सर दर्द करता रहेगा। और फिर बाद में नमाज पढ़ ली, वुजू कर लिया, तो फिर तो नींद भी नहीं आनी, सारी नींद खराब हो जाएगी। अब ये अंदर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अंदर से कोई चीज है जो कह रही है कि उठ जाओ, लेकिन आपने, आपके नफ्स ने उसको जस्टिफिकेशंस दे दी कि बहुत थकावट है आज और नींद पूरी नहीं हुई थी, नफ्स जीत गया और आपने सोचा कोई बात नहीं कजा पढ़ लेंगे। इस तरह नफ्स फिर जब जीतने का आदी हो जाता है ना, तो फिर वो नफ्स फूलता है, वो ताकतवर हो जाता है, इसको कुचलने की जरूरत होती है कि नहीं मैंने नहीं इसकी बात माननी, उठ जाए उसी वक्त बिस्तर से, दूसरा ख्याल ही ना आने दे। तो ये नफ्स आहिस्ता आहिस्ता करके फूलने लगता है, ताकतवर हो जाता है, तो फिर हमें चक्कर देता है, घुमाता है अपने इशारों पे। इसीलिए तो रमजान में इसी नफ्स की ट्रेनिंग है ना, इसको भूखा प्यासा रखते हैं, नींद भी कम होती है, फिर ये इतनी बातें हमें कह नहीं सकता, वीक हो जाता है ये। तो ये नफ्स की बुराई से भी पनाह मांगने की दुआ है कि अल्लाह ताला इस नफ्स को का तज़किया फरमा दे, अल्लामाती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह ताला इसको तकवा अता फरमा, मसनून दुआ है। तो इसके नफ्स ने उसके लिए आसान कर दिया अपने भाई का कत्ल करना। अब देखिए शैतान भी कोशिश ठीक है करता है, लेकिन शैतान एक एक्सटर्नल एलिमेंट है, ये इंटरनल है, यहां पे इसका जिक्र आया, फकतल हो तो उसने उसको कत्ल कर दिया। अब आता है ये तफसीरों में, इसराइली रिवायात में कई चीजें आती हैं कि उस वक्त जब पूरी जमीन के ऊपर, जाहिर है इंसान थे ही इतने, कुछ गिनती के तो चंद इंसान थे, तो उस वक्त जाहिर है कोई कत्ल भी नहीं हुआ था, कोई मरा भी नहीं था आज तक इस जमीन के ऊपर, तो उसने कहा कि उसने सोचा कि इसको मैं कैसे मारूं, क्या करूं इसका। तो बाज रिवायात में आता है कि काटने लगा उसको, कभी उसका गला दबाए, कभी कुछ करे, कभी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करे, यानी तरह तरह की चीजें कर रहे कि मैं किस तरह इसको मारूं क्या, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी ना कि क्या इसका तरीका कार क्या होगा। तो शैतान ने जब ये देखा ना कि इसको तो मारना ही नहीं आ रहा, तो ये तो कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसने, उस मलऊन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पे रख के दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये देख के फिर इसने भी यही किया अपने भाई के साथ, अल्लाह अकबर। वरना उससे पहले कभी वो भाई को गिरा के, कभी उसकी आंखें बंद करता था, कभी थप्पड़ मारता था, कभी घूंसे मारता था, शैतान ने सिखाया नहीं तो तू ये कर, इससे मरेगा ये। देखा फिर शैतान का फिर कहां से कार्रवाई आती, पहले नफ्स ने अपने अंदर ये नफ्स जीता, जमीर हार गया, उसके बाद शैतान का भी काबू फिर चल गया, उसका वार चला, फिर तो उसने कुचल दिया अपने भाई का सर। और जब ये मर गया तो फिर शैतान ने ये देखा और जाके हजरत हव्वा कहने लगा कि काबिल ने तो हाबिल को कत्ल कर दिया। उन्होंने पूछा कत्ल क्या चीज होती है? अब देखें कत्ल तो था नहीं ना कोई चीज, कि मतलब कत्ल करना क्या होता है। कहा अब ना वो खाता है ना पीता है ना बोलता है चालता है ना हिलता जुलता है। कहा अच्छा वो फिर मौत आ गई है? अब उनको ये तो पता था कि वो मौत एक चीज होती है। उसने कहा हाँ हाँ वो ही वाली मौत। अब तो फिर वो इतना रोने लगी, इतना उनको दुख हुआ, और उनकी बेटियां भी रोने लगी। और ये भी बाग जगह पे आता है कि आदम अलैहि सलाम इस कदर सदमे में गमगीन हो गए, साल भर तक वो हंसे नहीं। इसराइली रिवायात है। आखिर फरिश्तों ने उनके गम दूर करने के लिए और उनके उनको खुश करने की दुआ की अल्लाह ताला से। तो उस वक्त उनकी भी बात आती है, हजरत आदम ने उस वक्त अपने रंज और गम में कहा कि शहर और शहर की सारी चीजें मुतगैर हो गई हैं, जमीन का रंग बदल गया है और ये बदसूरत हो गई है, हर चीज का रंग और मजा जाता रहा है, तो हर चेहरे की कशिश खत्म हो गई। यानी जब इंसान गमगीन होता है तो उसको हर चीज लगती है ना, चीजें तो वही होती हैं लेकिन फिर उसको लगता है कि हर चीज में से रंग खत्म हो गया। तो इसी तरह जब काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया तो ये भी रिवायात में आता है कि अल्लाह ने उससे पूछा कि तेरे भाई हाबील को क्या हुआ? उसने कहा मुझे क्या खबर, मैं उसका निगेबान तो नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया सुन तेरे भाई का खून जमीन में मुझे पुकार रहा है और तुझ पे मेरी लानत है जिस जमीन के ऊपर तूने अपने भाई का खून बहाया। अब तू जो भी काम करेगा जमीन में वो अपनी खेती में से तुझे कुछ भी नहीं देगी, यहां तक कि तू उम्र भर बेचैन रहेगा भटकता रहेगा। ये अल्लाह ताला ने उसको कहा। फिर इसके ऊपर वो बड़ा नादम हुआ कि ये क्या हो गया, फिर ये मेरे साथ मुझे ये मिलेगा फिर इसके बाद। और इसी वजह से आपको पता है ना कि जो भी कत्ल इस दुनिया के अंदर होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके खून का बोझ आदम के उस बेटे पे भी रहता है, इसलिए कि उसने सबसे पहले इसकी इब्तदा की। तो याद रखें चाहे कोई नेकी है या बुराई है, जो बंदा उसको स्टार्ट करने वाला होता है उसके ऊपर उसका वबाल या उसका उसकी नेकी का सवाब है, नेकी है तो सवाब पहुंचेगा। इसलिए चीजों को शुरू करना ये बहुत ज्यादा बढ़ के करना कि मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने पहल की थी इसके अंदर, चाहे कोई फैशन है चाहे कोई और तरीका कार है, तो अपने आप को बड़ा समझना। तो ये भी देखना चाहिए कि ये चीज खैर की भी है कि नहीं, क्योंकि अगर लोग इसको देख के करने लगेंगे तो आपके ऊपर ये ना हो कि उसकी बुराई आ जाए। फिर आप ये देखें कि जो भाई ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया ना, तो बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर लड़ते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है, दोनों जहन्नमी है। यानी जब दोनों खड़े, अगर अगर हाबील भी खड़ा हो जाता कि अच्छा तूने मुझे मारना है, वो भी उठा लेता कोई पत्थर और वो भी कहता चल फिर लड़ते हैं, चल फिर लड़ते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, देखते हैं कौन किसको मारता है। ये भी बात होती है ना एक, ठीक है वो तो कोई करेगा लेकिन उसने तो कहा है, उसने तो पहल की, कहने में तो उसने पहल की थी ना काबिल में, लेकिन चल देख लेते हैं, मैं भी पत्थर उठाता हूँ तू भी उठा ले फिर पता चल जाएगा। दोनों ने तलवारें अगर उठा ली है तो फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है। सहाबा ने पूछा या रसूल्ला कातिल को तो समझ आती है लेकिन मकतूल क्यों जहन्नमी है? आपने फरमाया इसलिए कि वो भी तो अपने साथी के कत्ल के दर पे था, जाहिर है कत्ल तो एक नहीं होना था लेकिन इसकी भी तो कोशिश थी कि दूसरा कत्ल हो जाए, अब बार उसका चल गया, लेकिन कमी तो दोनों ने ही नहीं की थी ना। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। तो देखें फअसबह मिनल खासिरीन, तो वो हो गया खसारा पाने वालों में से। कैसे खसारा पाया उसने कि मैंने आपको ये जो बात बताई है कि दुनिया में अब जितने भी कत्ल होंगे कयामत तक उनमें से एक हिस्सा इस बंदे को मिलना है, तो खसारा ही हो गया इसके लिए दुनिया का। और आखरत में क्या होगा फिर इसके लिए? आखरत में तो कातिल को कयामत में मकतूल ढूंढता फिरेगा और उसके जुल्म के मुताबिक उसकी लेकियां ले जाएगा, और सब लेकियां ले जाने के बाद भी उस जुल्म की तलाफी ना हुई तो मकतूल के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। ये छोटी बात तो नहीं है ना। और फिर जब भाई ने भी कहा ना कि तू मेरा भी गुनाह अपने सर पे ले ले और फिर अपना भी तेरा गुनाह होंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसकी तो आखिर अंजाम जहन्नुम ही है। तो ये कितना बड़ा गुनाह है यार कत्ल। अच्छा अब क्या हुआ, अब उसने कत्ल तो कर दिया, कत्ल करने के बाद अब उसको समझना है कि अब इसको करूं क्या, इसकी बॉडी के साथ क्या करूं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कभी कोई कत्ल नहीं हुआ। तो अब परेशान, और बाज रिवायत में आता है, इब्ने कसीर में भी वो रिवायत आई है कि वो अपने भाई की लाश को 1 साल तक उठा उठा के फिरता रहा और उसको नहीं समझ आ रहा था कि मैंने क्या करना है इसके साथ। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए एक रहनुमाई फरमाई, फबअथ अल्लाह गुराबन, तो भेजा अल्लाह ने एक कौवा। बाज दफा ना कोई चीजें हमारे सामने आती है ना, तो हम कहते हैं हाँ वो चीज मैंने देखी। अच्छा आप किसी मसले में होते हैं, उसी का एकदम से जवाब आपके सामने आ जाता है किसी सूरत में, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत दफा हमें समझाने के लिए होता है। एक ऐसे होता है ना जिंदगी में, बहुत दफा ऐसे होता है हम ऐसी ही फिर कोई बात ही सुन लेते हैं कि हमें समझ आ जाती है, और देखे अल्लाह ने ये मुझे समझाना था असल में। तो वो कौवा आया, अब ये कि इत्तेफाक नहीं है कि कौवा आया तो एक इत्तेफाक हो गया, एक इत्तेफाक से मैंने कौवा देख लिया, इत्तेफाक से ऐसे हो गया, इत्तेफाक से मैंने टीवी खोला तो वहां पे कोई स्कॉलर मुझे बात बता रहे थे, इत्तेफाक से व्हाट्सएप पे भी इसी किस्म की बात आ गई। वो इत्तेफाक नहीं होता, वो अल्लाह ने समझाना। अब अल्लाह ताला ने एक कौवा भेज दिया, यबहथु फिल अर्ध, जो कुरेदता था जमीन में, लियुरियहु, ताकि वो दिखाए उसको, कैफ युवारी सबअत अखी, कि कैसे वो छुपाए अपने भाई की लाश को। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेज दिया, वो कौवा आया, वो बैठा वहां पे और उस जमीन उसने खोदी, गड़ा बनाया और उसके अंदर दूसरे कौवे को डाल दिया और उसके ऊपर वो डाल दी मट्टी डाल। मैंने पहले इंसान को लाश दफनाने का जो तरीका है वो किसने बताया, कौवे ने। सोचे शायद इसीलिए आज तक कई लोग इतने सुपरस्टिशियस हैं कि वो कौवे कोई मौत की अलामत समझते हैं, बास कल्चर ऐसे हैं। तो अब क्या हुआ, अब उसने जब ये देखा ना समझ आ गई, कहने लगा या वैलत, हाय मेरे ऊपर अफसोस है, जैसे हम उर्दू में कहते थे हाय मैं मर गई, ऐसे कहते हैं ना, तो वो इसी तरह ये या वैलता, हाय मेरी बदबख्ती, आजस तू अन अकोना मिथला हादल कुरा, मेरे मेरे अंदर इतनी भी अकल नहीं है जितनी इस कौवे के अंदर, मैं इतना आजिज हूं, मैं इतना इनकेपेबल हूं, मैं इतना ही बेवकूफ हूं कि इस कौवे को आके मुझे बताना पड़ रहा है कि कैसे अपने भाई की लाश दफनानी, मुझे इतनी भी ना समझ आई, आई मेरी कमबख्ती कि मैं इतना पागल हूं। यानी उसको अपने आप के ऊपर हुआ कि मेरी ना समझी कि क्या हालत है और ना समझ ही था जब उसने ये काम कर लिया कि परिंदा आके मुझे सिखा रहा है। फवारिया सवाता थी कि मैं किस तरह अपने भाई की लाश छुपाऊं। अब देखें कि जो इसका मतलब है कि पहली चीज, पहली दफा जो मुर्दे को दफनाना है, वो एक अल्लाह ताला ने तरीका इंसान को सिखाया है, इसीलिए फरमाया फबअथ अल्लाह गुराब, यानी अल्लाह ने चाहा कि इंसान इस तरह इंसान को दफनाए। अल्लाह ने एक कव्वे के जरिए इंसान को ये तालीम दी, एक इंसान का वो जो कातिल था या जो भी था, इससे इरिस्पेक्टिव ये आप बात को गौर करें कि अल्लाह ताला ने एक जानवर के जरिए इंसान को क्या तालीम दी, ये नहीं तालीम दी इंसान को कि जला दो इंसानों को। आज देखें जला जला के वो गंगा का हाल क्या किया हुआ है, एशेज डाल रहा है, या कोई अवन में डाल दो लाश को, वो एशेज बन जाए, फिर उन एशेज को ले लेके तो घर में रखते रहना मर्तबानों में डाल के, या फिर पानी में ही डाल दो, कई तरीके हो सकते थे ना। यानी अल्लाह ताला ने ये इंसान को तालीम दी है कि वो दफनाए, यानी यही तरीका सही है और यही फितरी तरीका है और यही है वो तरीका जो उस जमाने से जब पहला इंसान दुनिया से गया था उस वक्त से दफनाने का तरीका है। ये बाकी तरीके नेचुरल तरीके नहीं है, ये फितरत से हट के तरीके हैं, ये सही तरीके नहीं है। असल तरीका क्या है कि इंसान जब फौत हो जाए तो उसको दफनाया जाए, और शरीयत इस्लामिया ने तो कितना प्यारा तरीका दिया कि उसको पहले गुस्ल दिया जाए, उसको पूरा कवर किया जाए, कहीं उसका एक हिस्सा भी नंगा ना, फिर उसके लिए दुआ की जाए, यानी उसके लिए पर जनाजा पढ़ा जाए, फिर उसको जमीन में उतारा जाए, और फिर जमीन में भी इतना नीचे गड़ा खोदो कि ये ना हो कि कोई ऊपर ऊपर ही दफना दिया तो कोई जानवर आए और उठा के लाश की बेहरमती करे। इतना नीचे गड़ा करो। इसीलिए तो ये जमीन हमारे लिए रहने की जगह भी है जिस वक्त हम जिंदा हैं, और हमारी हमें अपने पेट में ले लेती है जिस वक्त हम मर जाते हैं। तो यही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई आप लोग दफनाते हैं तो आपके दफनाने में क्या वो है, और ये आपने कहाँ से सीखा, और ये तो सही तरीका नहीं है, और असल तरीका तो ये है जो हम कर रहे हैं, या ममीफाई करके रख देते हैं। अब ये भी तो देखे ना, फिरौन के जमाने में वो ममीज बना के रख देते थे, उनको ऐसे वो केमिकल्स लगा देते थे कि बस उनकी बॉडीज इसी तरह पर प्रिजर्व रहे। ये भी सही तरीका नहीं। ये है जो तरीका उस वक्त से बताया गया इंसानियत को। फअसबह मिनन नादिमीन, तो अब वो हो गया निदामत करने वालों में से, नादिम होने वालों। अब सवाल ये पैदा हो सकता होता है जहन के अंदर कि अगर वो निदामत करने वाले में से हो गया तो अल्लाह ताला तो निदामत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना निदामत ही तौबा है, तो अल्लाह ताला तो निदामत करने वालों को पसंद करता है और वो तो उनको माफ कर देता है, तो फिर क्यों नहीं इसको माफ किया अल्लाह ताला ने। इसलिए देखिए निदामत भी हर तरह की होती है ना, इसलिए कि इसको निदामत, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं इसको निदामत इसलिए नहीं थी कि मैंने ये काम गलत कर दिया, ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे इसके ऊपर, नहीं, इसको निदामत एक नंबर वन इस पे थी कि हाय कव्वा मुझे अब आके समझाएगा। इतना अपने आपको बड़ी चीज समझ रहा होगा ना, कव्वा मुझे आके समझाएगा, मैं तो मतलब इतना गया गुजरा हो गया, इसके ऊपर उसको पछतावा हुआ। दूसरी एक और भी चीज, जब खूनी रिश्ते का लिहाज नहीं किया ना, अपने ही भाई को उसके साथ जुल्म किया और कत्ल किया, तो याद रखें ये जो गुनाह होता है ना, इसकी अपनी एक बेसकूनी होती है, इसकी अपनी एक नहुसत होती है। या हम अंबिया के किस्से पढ़ते हैं ना, इंशाल्लाह ताला आप आगे भी जब पढ़ेंगे, तो वो कहते थे, लोग उनको कहते थे कि ये हमारे पास मनहूस आ गए, इनकी वजह से हमारे माशरे के अंदर अमनो अमान तबाह हो गया, और भाई भाई का दुश्मन हो गया, और ये हो गया। जबकि कुरान बताता है नहीं, तुम्हारा जो नहुसत है ना वो तुम्हारे अपने गले के अंदर है, वो तुम्हारे अपने आमाल है जो मनहूस है, जिसकी नहुसत तुम्हारे पर पड़ी है। तो नहुसत लोगों के अंदर नहीं होती, नहुसत इंसान के अपने अमल में होती है, वो जो नहुसत, वो जो बेसकूनी इंसान को होती है। और आप देखें वाकई कई लोग कितने ही मालदार होते हैं, बिलियनियर्स भी हैं, रातों को नींदें नहीं आती, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, क्यों, कहीं किसी के हक दबाए हुए हैं, किसी के साथ ज्यादती कर दी, हराम हलाल कहां से पकड़ के जमा किया हुआ, कोई चैरिटी वर्क करना नहीं है, बस जमा किए जाना, जमा किए जाना, और अपने ऊपर ही बस खर्च करते रहना। वो उनको क्यों नहीं खुशियां दे पाते, वो अंदर से बीमार हो जाते हैं, नफसियाती मरीज बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मगर वो निदामत नहीं है कि हमें हमने गलत कर दिया। वो रातों को नींद इसलिए नहीं उनको आती कि हमने कुछ गलत किया हुआ, बल्कि वो जो बेसकूनी है ना, वो उनके गुनाहों का नतीजा है। तो जब इंसान इस चीज के ऊपर आता है कि मैंने गलत किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मैंने क्या किया, ये मेरे हाथों से क्यों हो गया, तो तब तो आपको पता है 99 का कातिल भी हदीस, सबको पता ही है, अभी इस वक्त टाइम नहीं कि मैं दोहराऊं, 99 लोगों को कत्ल करने वाला भी, और फिर उसने वो 100वां भी कत्ल कर दिया जब उसने उसको कत्ल किया जिसने उसको कहा कि भाई तुम्हारी कभी बख्शिश नहीं हो सकती, 100 हो गए थे कत्ल, अल्लाह ने तो उसको भी माफ कर दिया, क्या उसने थोड़ी देर पहले ही तो तौबा की थी। हाँ अल्लाह ने तो उसको भी माफ कर दी, तो इसने तो एक कत्ल किया था, फिर ये बात कितनी हमें अजीब लगती है कि इसकी क्यों नहीं माफी हुई। इसलिए कि वो निदामत ये नहीं थी। बार दफा हम नादिम होते हैं मगर डायरेक्शन सही नहीं होती, नादिम किस पे हो रहते हैं, आए साहब ने देख लिया कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ, इतनी अब अपने अंदर बेचैनी, इतनी अब आए साहब के अंदर मेरी कितनी बदनामी होगी, वो क्या कहेंगे, ये ऐसी है ये है। अब ये निदामत किस चीज की है, ये निदामत इसलिए कि लोगों को पता चल गया, लोग क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में, लोग अब क्या सोचेंगे, मेरे क्या परसेप्शन होगी लोगों के जहनों के अंदर, लोग तो मुझे नेक नहीं समझेंगे, अब लोग तो मुझे ऐसे कहेंगे, अब ये निदामत नहीं है, ये पछतावा किस चीज का है, इनको क्यों पता चला, पछतावा तो है मगर किस चीज का, वो वाला नहीं है जो अल्लाह को मतलूब है। इंसान जो वो पछतावा होता है ना, इंसान अल्लाह की बारगाह में गिर जाता है, अल्लाह के आगे झुक जाता है, अपने आप को यानी डाल देता है बिल्कुल, ये अल्लाह ताला अब तेरे दर के सिवा मेरे पास कोई जगह नहीं, तूने ना माफ किया तो मैं किधर जाऊंगा, तू मुझे माफ कर, मैं ये बोझ लेके किधर जाऊं। इसी पछतावे काबिल के बाप ने देखो अल्लाह से कैसे माफी मांगी थी। उनको तो पता ही होगा ना कि कैसे अल्लाह ने इनको माफ किया है, सारी स्टोरी तो पता होगी उनको, उनको पता ही होगा कि क्या दुआ उन्होंने की थी, रब्बना ज़लमना। तो फिर उसने क्यों ना मांगी? उसको वो निदामत नहीं थी, उसको वो पछतावा नहीं था। तो जरूरी होता है कि निदामत भी सही डायरेक्शन में हो। नादिम तो हुआ, लेकिन असबा मीनन नादिमीन, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, नादिम होने वालों में से वो हो गया। यानी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पछताते तो हैं, लेकिन वो और चीजों पे पछता रहे होते हैं। अब देखें ये भी आया कि जब जो मैंने अभी आपको बात बताई कि अल्लाह ताला ने कहा अब तुम्हारे लिए ये कभी जमीन कुछ भी पैदावार नहीं करेगी और तुम इसी तरह भटकते रहोगे, तो अब बड़ा फिर नादिम हुआ क्या, आए आए मेरा तो नुकसान हो गया इतना, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं बेचैन भटकता रहूंगा। तो ये इब्ने कसीर में आता कि फिर वो बड़ा नादिम हुआ। अब ये बात थोड़ी है जिसके ऊपर के इंसान नादिम हो तो उसकी तौबा कबूल हो जाए, ये नहीं है वो। तो निदामत की भी डायरेक्शन सही करें, निदामत भी वो निदामत होनी चाहिए जिसमें यानी इंसान अपने उस गुनाह के ऊपर बेचैन हो और पछताए और रोए उसके ऊपर और अल्लाह से माफिया मांगे, ना कि कोई और ही बातों के ऊपर नादिम है। तो देखो बड़े बड़े जालिमों को माफिया मिल गई मगर काबिल को माफी नहीं मिली, फिर उसके पास वो सब्सटेंस ही नहीं था जो माफी का है। इससे पता चलता है कि ये जो हम कह देते हैं ना, एक और बात बड़ी हम बेपरवाही से अपने मुंह से निकाल देते हैं, हाँ अल्लाह तो गफूर रहीम है, जैसे कि वो अब मैं तो करती रहूं ना, पछतावा ना कोई हसरत ना कोई हाय मैंने क्यों कर बैठी ना कोई आजजी ना अल्लाह के आगे कोई तौबा ना कोई आंसू, अरे भाई अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बस ऐसी बातें ना किया करो भाई, हमें ना ये सुनाया करो, इसमें कौन सी आपकी निदामत है, इसमें तो कोई निदामत नहीं। तो अल्लाह गफूर रहीम तो है मगर आपके पास वो सब्सटेंस है क्या जिससे कि आप अल्लाह ताला की मगफिरत और उसकी रहमत को आवाज दे सके, ये भी तो सोचें। अब वो भी क्या के आराम से चला जाता, अल्लाह तो गफूर रहीम है ठीक है तो माफ कर ही देगा, मैंने भाई को कत्ल किया तो क्या हो गया, अब पता नहीं मेरे बाद कितने लोग कत्ल करते रहे, मैंने तो एक ही कत्ल किया। ठीक है, इस तरह से माफियां नहीं होती, वो मटेरियल चाहिए, वो चीज चाहिए जिससे कि माफी हो सके। ठीक है, तो बेपरवाही से ना कह दिया करें अल्लाह तो गफूर रहीम है, जैसे कि मैं करती रहूंगी और अल्लाह का काम तो ये है कि बस मुझे बख्शता रहे, तो वो मुझे चाहे कुछ रिमोर्स हो ना हो, मुझे चाहे अफसोस हो ना हो, मैं चाहे नादिम हूं ना हूं, मैं चाहे उस पे पछताऊं या ना पछताऊं, चाहे मैं उसको गुनाह समझती भी हूं कि नहीं समझती, एक बहुत सारे चीजों को तो हम गुनाह समझते ही नहीं है ना, उनको कहते हैं इसमें कौन सी क्या ऐसी बात है, और गुनाह समझू ना समझू बस अल्लाह ने माफ कर दिया, अगर अल्लाह को बुरा लगा भी होगा तो उसने माफ कर दिया होगा, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे क्यों नहीं फिर माफी हो गई, ये बताएं इस सवाल का जवाब, क्या अल्लाह उस वक्त नहीं गफूर रहीम था? अल्लाह तो था और वो गफूर रहीम भी था, फिर यहां पे क्या हुआ? तो हम अपनी सोच को सीधा करें, ये ना हो कि शैतान के बहकावे में हमेशा रहें कि वहां शैतान हमें सुझाता रहता, नहीं जी अल्लाह तो गफूर रहीम है, चल तेरी तो बख्शिश हुई पड़ी है, तुझे क्या फिक्र है, और हम भी इस खुशफहमी के अंदर बैठे रहे। तो इससे पहले जरा होश करें, अल्लाह गफूर रहीम बेशक है, लेकिन आपके पास निदामत के वो आंसू हैं, आप उसको गलती समझती हैं, आप उसको एक्सेप्ट भी करती हैं कि नहीं, या जस्टिफिकेशंस देती हैं, मिन अजली जालिका, इस वजह से किस वजह से, ये जो ये वाकया है, कतबना आला बनी इसराइल, हमने लिख दिया बनी इसराइल पे, सो बनी इसराइल के लिए लिख दिया, क्या बाकियों के लिए नहीं है? बाकियों के लिए भी है, और बाकी भी लोग यही कानून उनके लिए, क्या अन्नाहू, लेकिन फिर बनी इसराइल का सिर्फ क्यों जिक्र आया? इसलिए कि पहले भी देखें इस सूरत में बनी इसराइल की बात आ रही है, इसलिए सेकेंडली बनी इसराइल कत्लो गारत में इतने तेज थे, मैंने आपको बताया ना ये तो अपने नबियों को कत्ल कर देते थे, एक एक दिन में कई सौ नबी कत्ल कर देते थे, इतना इनके लिए आसान था कत्ल करना। खास तौर पे उनके ऊपर बात की गई, लेकिन हम सबको बता दिया गया ये पॉइंट कि ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। जितने लोग आएंगे सबके लिए अल्लाह ताला ने ये कानून लिख दिया। इसीलिए आप बहुत जगहों पे जब कोई ऐसी दहशतगर्दी की वाकियात होते हैं या कुछ होते हैं, तो फिर मुसलमान ना फौरन कहते हैं देखो जी हमारी तो किताब के अंदर ये लिखा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो बनी इसराइल का लिखा हुआ है, नहीं ये सबका है। ठीक है, क्या अन्नहू मन कतल नफ्सन, कि बेशक वो जो कत्ल करे किसी नफ्स को, भी गैरी नफ्स, बगैर किसी नफ्स के, यानी किसास के बगैर। किसास का हमने पढ़ा था ना सूरह बकरा में, कि नफ्स के बदले नफ्स कत्ल करना, किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसके बदले उसको कत्ल कर दिया जाए, उसके बगैर ऐसी कोई रीजन नहीं है। औ फसाद इन फिल अर्थ, या फसाद भी जो जमीन में फसाद करना है उसकी भी सजा कत्ल है, आगे भी आएगी। ठीक है, फसाद में क्या होता है, जमीन में फसाद में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जमीन का चैन और सुकून खत्म करना, जमीन में कत्लो गारत करना, जमीन में दहशत गर्दी करना, ये ड्रग्स के काम है, इसको बेचना खरीदना, इसको, ये सारे फसाद है जमीन के अंदर, डाके डालना, ये सारे फसाद है। तो फसाद करना उसकी भी सजा कत्ल है, लेकिन उसने ये भी नहीं की और ना ही उसने किसी को कत्ल किया है, लेकिन फिर भी उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये ऐसे है, पता है ये कैसे, फक अन्नमा कतल नासा जमिया, ये ऐसे है जैसे कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, जितने दुनिया में इंसान है ना सबको कत्ल कर दिया। अब ये इंसान ना सोचे कि एक को ही किया है, एक पूरी इंसानियत के ऊपर का कैसे आ गया ये, नहीं अल्लाह ताला ने बताया ये पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना। ये पॉइंट हम कैसे समझे, एक का कत्ल पूरी इंसानियत, पूरी इंसानियत तो बहुत बड़ी बात है ना। ये क्या क्या कहने, हमें क्या समझाया जाने जा रहा है यहाँ पे, हमें ये समझाया जा रहा है कि नंबर वन, एक इंसान के कत्ल को मामूली ना समझो, ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है गोया कि किसी ने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, ये ऐसे है, इतनी ये बड़ी बात है अल्लाह के नजदीक, इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। यही बात नंबर टू इसके अंदर ये बात है कि जब एक इंसान को कत्ल किया जाता है तो असल में एक तरगीब, एक मोटिवेशन मिल जाती है दूसरों को भी, लोगों की नजरों में फिर वो जुर्म हल्का हो जाता है। अब देख लेना आजकल कितना हल्का हो गया, इसलिए कि रोज कत्ल की खबरें सुनते हैं। एक जमाना हुआ करता था, आज से 80 साल पहले या 60-70 साल पहले एक जमाना होता था जिस वक्त के लोग बताते हैं कि एक गांव में कत्ल हो जाता था ना, तो सारे इर्द गिर्द के गांव वाले इतने खौफो हरास में मुबतला हो जाते थे, कई अरसे तक उसकी बातें होती रहती थी कि फलां जगह कत्ल हो गया, बहुत बड़ी बात होती थी। तो आज क्या कत्ल, आज आप देखें हम टीवी पे बैठ के कितना न्यूज में देखते हैं, फलानी जगह इतने लोग कत्ल हो गए, फलानी जगह ये हो गया, इतने को मार दिया, तो हमें कुछ भी नहीं होता, हल्का हो गया ना। तो जब ये चीज रिवाज पकड़ती है, एक कत्ल करता है तो उससे दूसरों को मोटिवेशन मिलती है कि इससे क्या हो गया, फलाने ने भी तो कत्ल किया था, चलो मैं भी किसी को मार देता हूँ, वो भी तो छूट गया। तो इस तरह सारा माशरा उसकी लपेट में आ जाता है। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वलकुम फिल किसासि हयातु या उलिल अलबाब, इसीलिए किसास लो, इसमें तुम्हारी जिंदगी है अकल वालों, अगर तुम्हें समझ हो। तो ये चीज माशरे के अंदर रिवाज पकड़ना शुरू हो जाती है, ये लोगों को आसान लगने लगता है, तो किसी के साथ कोई बात हो गई तो जो उठाया कोई चीज और उसको कत्ल कर दिया, कोई बात ही नहीं, अब उसके बाद भाग गए। तो खसूसियत से बनी इसराइल का किरदार बताया गया, वो मजलूमों पर जुल्म उठाते थे तो अल्लाह ताला ने उनका खास तौर पे नाम लेकर जिक्र किया, मगर बाकी सब के लिए ये एक बात बता दी गई कि चाहे वो उम्मते मुस्लिमा का फर्द हो, चाहे कोई भी हो, जो भी किसी को कत्ल, एक बंदे को भी ना, मजलूम को, मासूम इंसान को जिसका कोई कसूर नहीं है उसको कत्ल करेगा, तो उसके लिए ये है इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। कौन है कौन इतना बड़ा गुनाह लेके कयामत के दिन अल्लाह के आगे खड़ा हो सकता है, खुद सोचें। इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए इस दुनिया में किसी को रास्ते से हटाने की कोशिशें करता है। आजकल लोगों के पास और नई चीजें हैं तो वो जादू टूनों से ही कोशिश करते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये भी एक कत्ल का तरीका है लोगों ने निकाला। लेकिन याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने गुनाह है ना जो इस लायक है कि उनकी सजा दुनिया में भी दी जाए और आखरत में भी, उनमें सबसे बढ़ के गुनाह सरकशी और कताए रहमी है। सरकशी और कताए रहमी, और काबील ने ये दोनों बातें की, मुहादे से भी बढ़ गया कि उसने कत्ल कर दिया, और उसने कताए रहमी भी की, अपना सका भाई था, कोई और नहीं था। और अल्लाह ताला ने, देखिए सुभान अल्लाह, एक बात यहाँ पे पॉइंट और नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि उसने कतला हाबील, ये नहीं फरमाया आयत नंबर 27, कतला अखी, अपने भाई को कत्ल कर दिया। भाई भाई को कत्ल कर सकता है? उसने इतनी बड़ी गुनाह की काम किया। तो ये जो हद से बढ़ जाना, गुस्से में आ गए या इसमें आ गए, किसी की जान ले लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां से हमें पता चलता है कि इंसानी जान की कितनी बड़ी वैल्यू है इस्लाम में, कि इंसानी जान कोई, आप देखें आज के वक्त के अंदर क्या, वो जाते जाते कहीं बैग रख दिया, वो पूरे जो बाजार के अंदर सब लोग बेचारे शहीद हो गए, किसी जगह पे किसी बस में रख दिया, कभी जहाज के अंदर लेके चले गए, कभी कुछ कर दिया, उनको क्या कसूर है? एक फर्द को भी मारना, अगर पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, तो बताएं जो लोग इतने लोगों को मार दें उनका क्या है? तो इस्लाम कहता है कि इंसानी जान की बहुत कीमत है, बहुत कीमती चीज है, और सिर्फ मुसलमान की जान कीमती नहीं है, हर जान की। कहा गया कि नफ्स मुस्लिम नहीं कहा गया, कतला मुस्लिमन, नफ्स किसी जान को भी। और आप देखिए यहाँ पे नफ्स नकीरा है, यानी कोई भी जान। हम तो सोचते हैं ना सिर्फ मुसलमान है, वो यहूदियों वाली हमारे अंदर भी बात आ गई कि मुसलमान का, वो कहते हैं यहूदी का खून तो बहुत बड़ी वैल्यू वाला है, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें मरते भी रहे तो कोई बात नहीं। आज मुसलमान भी सोचते हैं मुसलमान कोई जाए दुनिया से तो वो कोई बात, तो बाकी तो इनका काम, ये इसी लायक है कि हम मरे, अच्छा हुआ मर गए। ये एक मोमिन का तरीका नहीं होता। बहुत बड़ा कोई आपका कारनामा नहीं है, यही हम बड़ी खुश होने की बात है कि अच्छा हुआ मर गए, नहीं। इंसानी जिंदगी की अल्लाह ताला के यहाँ हुरमत है, इज्जत है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि एक जानदार की भी, इवन यहां तक कि सुभान अल्लाह, वो जो आप जिबा करते हैं ना जिस जानवर को, उसको भी खाना तब जायज है जब अल्लाह का नाम लिया उसके ऊपर, तब उसके अलावा वो भी हराम है उसकी जान लेना और उसको कंज्यूम करना, उसको खाना। अल्लाह का नाम लेते हैं कि अल्लाह तेरे इज्जत के साथ इसको जिबा कर रहे हैं, वरना ये तेरी बीवी जान है, हम नहीं ये जान ले सकते, लेकिन अल्लाह तेरे नाम के साथ हम इसको जिबा कर रहे हैं कि तूने इजाजत दी है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई फन के लिए, कोई अपनी वो गुलेल ले लेते हैं या तीर अंदाजी का वो करना, कहीं किसी जानवर को बांध के उसके ऊपर तीर अंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने निशाने अच्छे करने के लिए, ये गुनाह का काम है, सख्त गुनाह का काम है। ठीक है, तो इवन आप किसी जानदार को उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक कि आपने मसलन उसको खाना नहीं है। मिसाल के तौर पे कि कोई फिशिंग करने जा रहा है, मछलियां पकड़ पड़े, हमने खानी तो है नहीं, उसको फेंक के जा रहे हैं, आप वो मर रही हैं उनको फेंक रहे हैं, नहीं तो वो हमें फिशिंग का शौक है, नहीं ऐसे नहीं। तो जान जो है ना वो कीमती है, चाहे वो किसी भी जानदार की है, तो एक इंसान की जान तो फिर और भी ज्यादा कीमती है। उसको खत्म कर देना और इसको कोई चीज ही ना समझना, देखो इस कुरान में क्या है, और देखो आज अपने माशरों के हाल देखो, जहां पे कोई टारगेट किलिंग हो रही है, कोई बोरी बंद लाशें मिल रही हैं, कोई कुछ हो रहा है, ये क्या है? ये मुसलमानों का तरीका है क्या जिनके कुरान में ये लिखा हुआ? फिर वही बात है कि खौफे खुदा अगर नहीं होगा तो फिर ये सारी चीजें ही हो जाएंगी, और अगर खौफे खुदा है तो फिर इंसान डरेगा कि मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी को और आदिल मुस्लिम बादशाह को कत्ल करने वाले पर सारी दुनिया के इंसानों के कत्ल का गुनाह है, इतना बड़ा ये गुनाह है। और फिर एक रिवायत में आता है कि एक को भी बेवजह मार डालने से कोई जहन्नमी हो जाता है, वो ऐसे ही है जैसे सारों को उसने मार दिया। और हम पहले पढ़ चुके हैं सूरत निसा के अंदर कि जो किसी को भी ना हक कत्ल करता है, ना हक, उसका कोई कसूर नहीं है या उसको कोई सजा के तौर पे नहीं, जैसे फांसी की सजाएं होती हैं उसके लिए उस तरह से नहीं, वरना तो वो जो देने वाले हैं सजा वो तो पता नहीं कितना के मुजरिम हो जाए, वो नहीं, वैसे ना हक कत्ल करता है। तो हमने पढ़ा था कि उसके लिए जहन्नुम है और उसके लिए अल्लाह का गजब है और अल्लाह की लानत है और बड़ा अजाब है। कितनी सारी सजाएं आई थी वहां पे। वमन अहयाहा, और जो कोई जिंदा करता है, यानी जिंदगी तो अल्लाह ही देने वाला है, मगर मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई इंसान भी जिंदगी देता है, नहीं ये नहीं मतलब, यानी किसी ने किसी को बचा लिया। फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, देखो कितना खूबसूरत है तुम्हारा दीन, अगर ये लोग इस दीन को बदनाम कर रहे हैं, लोगों के गले काट काट के और सर उनके दिखाते हैं, फिर यूट्यूब पे वीडियोस बना के सर दिखाते हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं कहता, ये क्यों इस्लाम को बदनाम करते हैं अपने गलत अमल की वजह से। देखो इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है जो कहता है एक को जिंदगी दी ना, एक इंसान को, तो पूरी गोया पूरी इंसानियत को जिंदगी दी, पूरी इंसानियत को कैसे, यानी एक इंसान अगर किसी की जान बचा देता है, फॉर एग्जाम्पल के उसको मसलन खून का अतिया दे देता है, उसको खून चाहिए था, या किसी की जान बचाने के लिए कोई डूब रहा था उसको बचा ली, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा था उसकी जान बचा ली, कोई किसी और तरह किसी बीमारी में ऐसे मर्ज में था कि उसको कोई ऑर्गन की जरूरत थी, तो वो उसको किसी इंसान के पास अगर फॉर एग्जाम्पल किडनी है या ऐसे कोई ऑर्गन है जो कि उसके बगैर वो मरता नहीं है, मतलब बोन मैरो वगैरह उसका मैच हो गया, आपने उसको दे दिया, उसकी जान बच गई, या डॉक्टर हजरात हैं, देखो वो मतलब किस तरह से किसी के लिए दिन रात अपने एक करते हैं, आजकल कोविड केस के अंदर अपनी भी जान खतरे में डाल के लोगों के लिए जाने बचाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सारे इसके अंदर आ गए। इस तरह फायर फाइटर्स हैं, कहीं आग लग जाती है वहां पे लोगों को निकालते हैं जाके, तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये किसी की जान बचा लेना, किसी एक को भी जिंदगी दे देना, इतना बड़ा सवाब का काम है, इतना बड़ा सवाब का काम है। आजकल हम कहते हैं हमें क्या मुसीबत पड़ी कि हम इसमें पड़े, कोई मसलन कोई देख लेता है किसी ने किसी को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ है या किसी को कोई हरासा कर रहा है, वो कहते हैं हमें क्या करते रहे। आजकल लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि वो दो को लूट के लोग ले भी जाते हैं सबके सामने, होता है वो कहते हैं हमें नहीं जरूरत है हम इसमें पड़े। तो किसी भी इंसान को बचाने का कोई भी तरीका है, चाहे कोई अबॉर्शन कराने जा रहा है आपने उसको रोक दिया, एक जान बचा ली आपने, या किसी कोई किसी को मारने का इरादा रखता है और आपने उसको समझा दिया, किसी के इलाज के लिए आपने पैसे दे दिए जिसकी जान बच गई, उसका इलाज इतना महंगा था वो नहीं करा सकता था, मर सकता था उससे बीमारी से, लेकिन आपने उसके लिए पैसे दे के उसकी जान बचा ली, इलाज के काबिल हो, कितने लोग बेचारे मर रहे होते, दवाइयां के पैसे नहीं होते, इंजेक्शन के पैसे नहीं होते। तो ये सारे ही काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपने, और आप और भी जितने तरीके इसके अलावा भी जो भी आप देखते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में, कैसे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, ये छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा नेकी का काम, इतनी बड़ी भलाई है कि सोचो कि पूरी जमीन पे जितने इंसान है उनके साथ उसने भलाई कर दी, उन सबको जिंदगी दी। आज देखो हम ये बातें ही भूल चुके हैं, आज हम सबसे पहले पूछते हैं कि किसी के पास पैसे हैं इलाज कराने, अगर पैसे नहीं है तो फारिग बता मरते रहो वहां पे उसके अस्पताल के फर्श पे ही मर जाए तड़प तड़प के, उसको इलाज नहीं करते, कहते कि नहीं इतना बिल पहले इतने पैसे लाओ जमा कराओ तो फिर हम करेंगे, और फिर वैसे भी लोगों की उनका तो हमें कुछ ख्याल ही नहीं है कि कुछ चीज जान जाती है तो जाती, फिर हमें क्या, नहीं हम क्यों अपने आप को खतरे में डालें। तो आप देखें कि कई डॉक्टरों ने अपने आप को आज उनको हीरो का खिताब दिया जा रहा है, और कई ऐसे हैं वो अपनी जानें बचाने के लिए कहते हैं कि हमें गलत ही लिख दो कि हम नहीं जा सकते, हम बीमार हैं हम खुद ना, तो उस अपनी जान बचा के बैठ जाते हैं, हम क्यों बीमार हो, हम क्यों अपने आप को मुसीबत में डालें, कई ऐसे भी होते हैं। आज आप देख लें कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या जहां पे भी मुसलमान हैं, मुसलमानों का किरदार आपको इनमें से कौन सा लगता है और गैर मुस्लिमों का कौन सा लगता है? दुख होता है ये पढ़ के भी कि हम किस कदर गिर चुके हैं। ये किरदार है हमारे अंदर आज उलट हो चुका है। जो हमें करना चाहिए था वो दूसरे लोग कर, हमें तो इनको बताना चाहिए था, आज हम इनसे सीखें। ये कोई बात नहीं है, वो बाद में होगा पैसों का मामला, वो बाद में बिल जितने मर्जी चाहे मिलियन का बिल भेज दें, लेकिन इस वक्त आपको इनकार नहीं करेंगे इलाज करने से। कोई वापस नहीं करेगा कि नहीं आपका इलाज नहीं करना पड़े, मरते रहो। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति सुम्मा इन्ना कसीरन मिनहुम बादा ज़ालिका फिल अर्दि लमुसरिफून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इनके पास रसूल भी भेजे, रोशन निशानियां दे के भेजे इनके पास, यानी अल्लाह ताला ने अपने अहकामात भेजे अंबिया के जरिए, याद दहानी इनको कराई इन बातों की, लेकिन इसके बावजूद इनका ये हाल था कि इन्ना कसीरम में हम बाद जालिक फिर कर दिला मुशरिकून। इनमें से अक्सरियत जो थी ना इसके बाद भी जमीन में हद से ही बढ़ने वाली थी, फिर भी ये बाज नहीं आए, फिर भी इन्होंने अपने काम छोड़े नहीं, हद से बड़े रहे। यानी आज आप देखें, वो कहते हैं, यानी किसी ने मुझे बताया था, किसी डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे लोग आते हैं कि यानी कटे फटे, क्या होता है कि एक उन्होंने हमारा मारा था, हम उनके 10 मार के आए हैं। आप देखें इस तरह दुश्मनी आगे से आगे, आप न्यूज में भी सुनते हैं एक ही खानदान के उन्होंने इतने सारे अफराद खत्म कर दिए अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से। ये देखें हमारे हालात, तो वो मुसरिफ हैं, हद से बढ़ जाने वाले, हद से आगे चले जाने वाले। इन्नमा जजा उल्लदीना, अब आगे आ रही है एक और बात मुहारबे की, अभी ये इंसानी जान की हुरमत की बात और इसकी बात चल रही है, और इसके बाद हमें बताई जा रही है अब कुछ हुदूद की बात आएगी कि क्या इनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए।